आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजयोगी सुशील भाई जी का हम सब एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाई सब, आप ज्ञान में 1995 में आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के रूप में। सोनी कंपनी में 15 साल अमृतसर पंजाब में आपने जॉब की। मधुबन में 1999 में समर्पित रूप से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिस में, मीडिया रिपोर्टिंग में, सोशल विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर में, और आपका लौकिक घर ज्वाला जी कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के हैं आप। हम सब मन बुद्धि को एकाग्र करके बैठे, तभी बाबा के अनेक रत्नों से हम झोली भर सकेंगे। आज का भाई सब का विषय है भगवान के दिल पर चढ़ने की विधि। तो सुनते हैं भाई सब से।
ओम शांति। कहा जाता है, अगर किसी के दिल तक पहुंचना हो तो उसका रास्ता कहां से जाता है? हाँ जी, पेट से जाता है। तो सबको पता ही है। तो बाबा का दिल जीतने के लिए कौन से पेट का रास्ता जरूरी है? बाबा को भी भोजन चाहिए, पेट अर्थात भोजन किसी को खिलाना अर्थात उसका दिल जीतना। तो भगवान को कौन सा भोजन चाहिए? भावना का, प्यार का। एक अव्यक्त वाणी में महावाक्य है, जैसे तुम बच्चे भगवान को स्थूल में भोग तो स्वीकार कराते हो, लेकिन उससे भी शक्तिशाली भोग है शुद्ध संकल्पों का। हमारे संकल्प कितने अर्पित उसके ऊपर हो रहे हैं? हमारे जो पुरुषार्थ की गति निर्धारित होती है वो हमारे संकल्पों पर ही निर्भर करती है। दिन प्रतिदिन हमारे संकल्पों में कितनी प्योरिटी बढ़ती जा रही है, कितनी उसमें शक्ति है, कितनी उसमें निरहंकारिता है, कितने उसमें कल्याण की भावना समाई हुई है। हमारे संकल्प जो भगवान के द्वारा दी हुई अमूल्य पूंजी है उसको सहेजने में हम कितना पुरुषार्थरत रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। इतनी अमूल्य संपदा जो हम सबको भाग्य में नसीब हुई है उसका हम कितना सदुपयोग करते हैं। तो सबसे पहला संकल्प तो बाबा ने हम सबको दिया, कौन सा? आत्म अभिमानी बनने का। जिसका दिल जीतना होता है तो उसके जैसा बनना अनिवार्य है। बाबा हमेशा निराकारी स्थिति में स्थित रहते हैं, इसलिए बाबा ने आते सबसे पहला पाठ भी हम सबको वही पढ़ाया, निरंतर योग्य निरंतर सेवादारी बनने के लिए, सफलता मूर्त सेवादारी बनने के लिए। हम उस पहले पाठ में कितना परिपक्व हैं, जैसे वो निराकार है वैसे मैं भी निराकार आत्मा हूं, उस निराकारी अवस्था में कितना हम स्थित रहते हैं। उस विदेही अवस्था में, एक है देही अवस्था, दूसरा है विदेही अवस्था, दोनों में क्या अंतर है? अशरीरी अवस्था, आत्मवानी अवस्था, क्या अंतर है इनमें? विदेही अवस्था, हाँ जी, जी। तो जब भी अव्यक्तवाणी आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से एकाग्रता से, तो उसमें बाबा शब्द के आगे विदेही बाप लिखा है, कहीं देही बाप नहीं लिखा हुआ है। विदेही शब्द हमारा निराकारी अवस्था को इंगित करता है, वो हमारी परम धाम की अवस्था है विदेही अवस्था। जब हम देह में आते हैं, देही बनने का अभ्यास करते हैं, आत्मा बनने का, आत्मा समझने का, महसूस करने का, रियलाइज करने का अभ्यास करते हैं, तो जब आत्मा देह के स्वभाव, देह के संस्कार, देह की कमजोरियां, कमी, पुराने संस्कार, उनसे हम जब मुक्त होते हैं तो हम विदेही अवस्था की तरफ उड़ान भरते हैं। देह में हैं तो सारे देह के संबंधों की, देह के पदार्थों की, देह के वैभवों की, वो सारी स्मृतियां रहती हैं। लेकिन लंबे समय का अभ्यास करने के बाद एक जो अंतिम अवस्था आती है, विदेही अवस्था। भले हम इस संसार में रह रहे हैं लेकिन हम उससे बिल्कुल अशुद्ध हैं, बिल्कुल अनटच हैं, वो विदेही अवस्था हमारी, क्योंकि ऊपर जाके अनुभव भी नहीं है, अनुभव तो अभी है। संगम युग है ही अनुभव करने का युग, अनुभव पूरे सृष्टि के जो 84 जन्मों की अनुभूति है वो केवल अभी है। परमधाम की जो हमारी अवस्था है उसकी अनुभूति, जिसको मुक्ति की अवस्था कहते हैं, चाहे सतयुग में जीवन मुक्ति की अवस्था की अनुभूति, वो भी अभी है। संडे की मुरली हम सब ने सुनी थी, बाबा ने इस जीवन में रहते हुए कौन सी अवस्था का मजा लिया, जीवन मुक्ति अवस्था का मजा अनुभव किया। तो ये अनुभव का समय चल रहा है, जो तो विदेही अवस्था है उसका अनुभव अभी हमको करना है। दूसरा है आत्म अभिमानी अवस्था, उसका अर्थ क्या है, जब हम देह में रहते हैं और आत्मा का अभिमान है, अर्थात आत्मा से संदर्भित जो भी हम सबको ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को हमने जितना अर्जित किया है, वो ज्ञान हमारे अंदर जितना समा गया है, उस ज्ञान की स्मृति के आधार पर जब हम देह में रहते हैं तो हम आत्म अभिमानी, अर्थात देह है लेकिन अभिमान आत्मा का है ऊपर। कल की साकार मूल्य थी देह अभिमानी, देही अभिमानी और देह अभिमान। बाबा ने कहा तुम बच्चों को देह अभिमान में भी आना है, किस लिए, शरीर निर्वाह अर्थ, ऐसा नहीं हमको भूल ही आना है। अगर हमसे कोई परिचय पूछे आप कौन हो, तो हम सीधा ये नहीं कि मैं आत्मा हूं। देह अभिमान में कर्म क्षेत्र में तो आना ही आना है, लेकिन लंबे समय से आत्मा से संदर्भित जो भी हमको ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को हमने आत्मसात किया है, अपने कर्मेंद्रियों में समाया है, उस ज्ञान के आधार पर, उस ज्ञान की शक्ति के आधार पर जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो वो आत्मा का अभिमान हमारे देह के ऊपर भी दृष्टिगोचर होता है। इसलिए हमारा दिन प्रतिदिन नूर क्यों बढ़ता जाता है, नूर कोई देह का नहीं है, नूर किसका है, वो आत्मा का है, क्योंकि परमात्मा प्रकाशवान है, वो निरंतर है, सदा ही प्रकाशवान है। तो जितना हम उस आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं तभी हमारे चेहरे का नूर बढ़ता है, तभी अवस्था हमारी प्रकाशवान, दूसरों को दृष्टिगोचर होती है। ऐसे फैशन करने से कोई दूसरों को अनुभूति नहीं होगी, आया था ना बाबा ने कहा फैशन करते हैं, तो हमें तो कितना अलौकिक फैशन मिला हुआ है। कौन कौन सा फैशन है हम सबको बाबा ने दिया हुआ है, श्रृंगार कौन सा कराया हुआ है, शक्तियों का, दिव्य गुणों का श्रृंगार, मस्तक पर चमकती हुई बिंदी, होठों पर रूहानी मुस्कान, चेहरे पर कौन सी लाली, रूहानियत की लाली, दिव्यता की लाली, अलौकिकता की लाली। तो हमें स्वयं भगवान ने हमारा श्रृंगार किया है, दिव्य गुणों से श्रृंगार किया है। जितना हम उसके चिंतन में रहते हैं उसी अनुसार हमारा स्वभाव भी अपने आप बनता जाता है, हमारे संस्कार भी वैसे अपने आप बनते जाते हैं, और वो स्वभाव संस्कार हमारी नेचुरल आदत में आते जाते हैं। फिर हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है कि अभी हमें सामने वाले से क्या बोलना है, क्योंकि लंबे समय का अभ्यास, वो गुणों का, वो शक्तियों का चिंतन करते हुए हमने अपने चित्त में उसको भर लिया है, तो हमारे स्वभाव संस्कार आदत में अपने आप ही शुमार हो जाते हैं। वो दैवी संस्कार, वो ईश्वरीय संस्कार, लेकिन उसके लिए पहले सारा स्मृति में रखना आवश्यक है कि हमें कौन कौन से दैवी गुण मिले हैं, कौन कौन सी ईश्वरीय शक्तियां हमने अर्जित की हैं। पहले तो उसकी स्मृति चाहिए। उस स्मृति के आधार पर जितना उसने हमको जो दिया है खजाना, जो प्राप्तियां दी हैं, जितना हम उनको स्मृति में रखते हैं तो भी हम बाबा के दिल के समीप जा रहे हैं। दूसरा, हमें तभी महत्व देता है जब हम उसकी दी हुई चीज को महत्व देते हैं। अगर किसी की दी हुई चीज को हम लेके रख दिया, उसको यूज नहीं किया और सामने वाला देखेगा कि आप इसको यूज करना, और हमने उसको यूज नहीं किया और अगली बार वो आता है, वो वहां की जीवों की त्यों पड़ी है, उसको यूज बिल्कुल नहीं, सामने वाले को कैसे लगेगा। तो भगवान भी हमको रोज क्या क्या देके जाता है, उसको हम कितना अपने जीवन में लाते हैं, उस पर कितना हमारा विचार सागर मंथन चलता है, तभी वो उसको खुशी रहेगी कि मेरी दी हुई चीज की वैल्यू है, कदर है, तो उसके दिल पर स्वतः चढ़ेंगे। भगवान का दिल तो बहुत विशाल दिल है। बाबा कहते हैं सारे दिन में जो भी कर्म करते हो भगवान के दिल पर बैठकर करो, अर्थात दिल पर बैठना कोई दिल दिखाई नहीं देगा, उसके ज्ञान की स्मृतियां, उसके द्वारा दी हुई हमको जो अलौकिक प्राप्तियां हैं उनकी स्मृतियों के अनुसार जब हम कर्म करते हैं, दूसरों के संबंध संपर्क में आते हैं, तो जैसे हम उसके दिल के करीब हैं। ब्राह्मण बनने से पहले तो हम सब ने दिल किस किस को दे के रखा हुआ था, कितने टुकड़े हो चुके थे, कहां कहां गिरे हुए थे, और भगवान को कितना उन टुकड़ों को जोड़ने में कितनी मेहनत करनी पड़ी। जब से ऊपर से वो अवतरित हुआ उसकी दृष्टि हमारे ऊपर तभी से पड़ गई, तब से लेकर जब तक हम उसके पक्के बने तब से लेकर वो हमको दृष्टि देता जा रहा था। संसार में जहां जहां हमारे दिल जुड़ा हुआ था, हमारे संबंध, लगाव, अटैचमेंट जहां जहां थी, उनको तोड़ने में उसको मेहनत करनी पड़ी। तभी तो बाबा कहते हैं मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो एक मम्मा के ऊपर बाबा ने मुरली चलाई थी, हे मेरी शिरोमणि राधे बच्ची, अगर मैं चाहूं तो एक सेकंड में संसार को बदल सकता हूं, लेकिन बीच में हम सभी ऑब्स्टेकल बन के बैठे हुए हैं। तो जैसे उसने इस धरा पर ऊपर से दृष्टि डाली तो हमारे स्वभाव संस्कार कमजोरियों को भस्म करने का कार्य तभी से उसने चालू कर दिया है, पिछले जन्मों से ही। वो करते 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 तभी हमारी आंख खुली, उसको पहचानने की योग्य बनी। तो जितना हम उस पहली स्थिति में अर्थात सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं तो उतना हम भगवान के दिल पर चढ़े रहते हैं। इसलिए कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो हमारी सारे दिन में हम सत्य स्वरूप में कितना स्थित रहते हैं। देह में स्थित रहना अर्थात झूठ में स्थित रहना, हाँ कर्म में आते हैं जो बाबा ने कल कहा, लेकिन ज्ञान की स्मृति उसमें मिश्रित हो जाए तो सच्चे दिल पर साहब राजी। इसलिए सच से संबंधित बाबा कहते हैं सच तो बिठो नच, और सच से संबंधित बाबा ने और क्या कहा, सत्य के सूर्य को असत्यता के बादल छिपा नहीं सकते, और सच के बारे में क्या कहा बाबा ने, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, और सांच को आंच नहीं, और सत्य के सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में सिद्ध है, और एक और भी सत्य है, हाँ जी, सत्य को सिद्ध करना नहीं पड़ता है, और सच्चे दिल पर साहब राजू तो सबसे पहले ही हो गया, हाँ जी, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, फिर सत्य में भी जयते, क्योंकि अपने बुद्धि को दौड़ाना, खोलना, थोड़ा उसको खींचना है, स्ट्रेच करना, तभी तो खुलेगी, तभी तुम्हारा चिंतन विशाल होगा, प्रखर होगा। और एक सत्य और है जिससे कोई छूट नहीं सकता, सत्य अजर अमर अविनाशी है। हाँ, और एक अंतिम सत्य है, राम नाम सत्य, वो तो हम भूल ही गए, जिससे हमको सभी को गुजरना है, उसको उसको तो रोज याद करना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम। तो सारे दिन हम अपने सत्य स्वरूप में कितने रहते हैं। दूसरा सच्चाई सफाई अर्थात अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हम कितना सच्चाई सफाई से उसकी श्रीमत को अपने जीवन में लाते हैं, कर्मों में लाते हैं। उसकी श्रीमत हमारे कर्मों से दूसरों को क्या अनुभव कराती है, दूसरों के जीवन को बदलने के लिए क्या उनको प्रेरणा मिलती है, या कहीं उनको हमारा त्यागमय जीवन तो नहीं अनुभव होता है। जब भी हमको ये ज्ञान मिलता है, इस ज्ञान को बड़ी समझ के साथ, बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ, जब हम कर्म क्षेत्र पर रहते हैं तो बड़ी समझ के साथ हमको इसको व्यवहार मिलाना है। ऐसा नहीं जैसे मिला वैसे हम दूसरों से उसको व्यवहारिकता में लाना आरंभ कर दें। जैसे कहते हैं भाई आत्मा आत्मा भाई भाई, तो हम घर में जाके ऐसे नहीं कहना शुरू कर दे, नहीं तो सामने वाला सुनेगा कौन। जो संबंधों में पहले से थोड़ी बहुत मधुरता रही है वो कड़वाहट में बदल जाएगी। तो बड़ी समझ के साथ इस ज्ञान को दूसरों के सामने परोसने की आवश्यकता है, और धीरे धीरे। पहली बात तो है कि हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि हमारा जीवन की खुली किताब ही उनके लिए बन जाए, हमें बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़े, क्योंकि अंतिम समय बाबा कहते हैं कितनों को ज्ञान सुनाएंगे। वैसे भी देखा जाए जब से यज्ञ की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, क्या सबको ज्ञान मिल गया है? कितने करोड़ों आत्माएं, 850 करोड़ के आसपास राउंड अबाउट, कितनों तक ये ज्ञान पहुंचा होगा? तो क्या सब तक ज्ञान पहुंच जाएगा? ये तो कैसे पहुंचेगा? फिर हमारे वाइब्रेशन, मन के वाइब्रेशन हमारे कितने शक्तिशाली हैं। अंतिम सेवा यही है, मनसा वाइब्रेशन, कितना हम स्वयं को वाइब्रेशन से इतना शक्तिशाली बना रहे हैं। हमारे बोल में, हमारी दृष्टि में जितने प्योरिटी के वाइब्रेशन होंगे, जितनी दिव्यता के वाइब्रेशन होंगे, अलौकिकता के वाइब्रेशन होंगे, तो वो स्वतः दूसरों को बदलने के, स्वयं को बदलने के लिए प्रेरित करेंगे, वो अनुभव कराएंगे। और इसके लिए अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, गुप्त मंत्र जिसको बाबा कहते हैं। वास्तव में इस पुरुषार्थ के लिए कोई टाइम की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारे कर्म करते हुए हमारे संकल्प किस दिशा में चल रहे हैं, हमारे संकल्प कितने ऊंचे हैं, कितने प्योर हैं, वो संकल्प ही उसके ऊपर अर्पित होंगे। उसका दिल जीतने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसकी दृष्टि अपने आप ही हमारे पर पड़ रही है। जैसे घर में माँ बाप की दृष्टि कौन से बच्चे पर पड़ती है, जो आज्ञाकारी होता है, जो आकर्षित करता है, जो माँ बाप के पद चिन्ह पर चलता है, स्वतः माँ बाप का पूरा समाज उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, पूरे समाज का वो व्यक्ति प्यारा बन जाता है। इसलिए तो समाज वाले कहते हैं कि फलाना व्यक्ति तो जैसे देवता ही है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में दिखाई देता है। तो बाबा का बनने के बाद हमारे जीवन में बदलाव कितना आ रहा है, किस गति से हमारा परिवर्तन हो रहा है, वो स्वयं ही जांच करने की आवश्यकता है। दूसरा, भगवान का दिल जीतने के लिए समर्पणता बड़ी आवश्यक है। समर्पणता अर्थात देह की समर्पणता की बात नहीं है, हम मन से कितना समर्पित हैं, उसके ऊपर कितना अर्पित हैं। लौकिक में रहते हैं तो लौकिक घर को भी हम कितना अलौकिक बनाकर रखते हैं, अर्थात जो भी हमारे संबंध है, दैहिक संबंध है, उन संबंधों को भी हम आंतरिक वृत्ति से कितना अलौकिकता में परिवर्तन कर रहे हैं। अंदर की बात, अंदर ही अंदर उनको कितने वाइब्रेशन दे रहे हैं उनको। तो समर्पण बुद्धि, जो भक्ति में कहा तन मन धन सब कुछ तेरा, तो भी क्या प्रैक्टिकल में हम तन को घर में भी सेवा में लगाते हैं, धन को भी लगा रहे हैं, मन भी लग रहा है, वो किस दिशा में जा रहा है? क्या उस तन मन धन से हमारी सेवा, चाहे स्थूल सेवा चाहे सूक्ष्म सेवा, उस सेवा के माध्यम से भगवान के दिल तक पहुंचा जा सकता है? क्योंकि ये यात्रा है, हम इस यात्रा पर निकले हुए हैं, कोई एक दिन में नहीं बनेंगे, लेकिन इस यात्रा में ही चलते चलते हमको सब वो सारी अनुभूतियां करनी है। मजा यात्रा में होता है, मंजिल पर पहुंचने पर मजा नहीं आता है। जैसे आप घर से निकले, घर से लेकर मधुबन पहुंचने जो आपकी खुशी थी, उसमें कितनी क्यूरियोसिटी थी, जाना है जाना है, पहुंचना है पहुंचना है, ये हम पहुंच गए भी आप, तो यहां खुशी थम गई आगे, वो क्यूरिसिटी पूरी हो गई, अब जाते समय थोड़ा कम होती जाएगी, तो जो यात्रा हमने तय की आते समय उसमें ज्यादा खुशी है। इसलिए पुरुषार्थ की यात्रा में खुशी है, जो हमारी अंतिम अवस्था उसमें बनने में इतनी खुशी नहीं है, क्योंकि वहां से तो हमारी फिर गिरती गला है, तो यात्रा में खुशी है। इसलिए कहा जाता है पुरुषार्थ में ही प्रारब्ध का अनुभव करना है, अभी अभी किया अभी अभी अनुभव, अभी अभी किया अभी अभी अनुभव, तो ये अनुभव की यात्रा है। तो जितना हम पूरी समर्पणता के साथ इस ज्ञान पर चलते हैं, जैसे आज के महावाक्य ले लो, उन महावाक्य से लेकर उन पर चिंतन करना है, जैसे फैशन के बारे में बावन का, पहले हमको वो चिंतन करना है जो हम सहज रूप से कर सके, फिर गहरे चिंतन की तरफ हमारे कदम तुरंत नहीं जाएंगे, जो उथला उथला चिंतन है पहले उसको पकड़ना है, जैसे फैशन है, तो फैशन से हम सभी गुजरे हुए हैं। अगर बाबा ने कहा कि कर्मातीत अवस्था, उससे हम इस जीवन में नहीं गुजरे हुए हैं, वो हमको भारी लगेगा, लेकिन फैशन से तो हम सभी गुजरे हुए हैं। तो फैशन के ऊपर चिंतन करना है कि कौन सा फैशन किया आज तक जिसके कारण हमारे साथ हम गिरती कला में चले गए, जिसके कारण हमारा उत्थान नहीं हुआ, हमारी अवनति हुई, हमारे जीवन की दिशा पलट गई, भगवान के प्रति बेमुख हो गए हमें, तो कौन कौन सा हमने फैशन किया और उस फैशन को अलौकिकता में कैसे कन्वर्ट करना है। जितना हम इस अलौकिक फैशन से सजे सजाए होंगे, उसका दिल अपने ऊपर हमारे ऊपर आएगा। संसार में भी आकर्षण किसके प्रति होता है, जो ज्यादा सजे सजाए होते हैं, जिन्होंने ज्यादा श्रृंगार किया होता है, जो पास में से गुजरता और सेंट की खुशबू वाली हो तो ना चाहते भी ध्यान उसकी तरफ जाता है। तो हमने ज्ञान की खुशबू अपने में कितनी समाई हुई है, ज्ञान का सेंट कितना लगाया हुआ है, वो दिव्यता कितनी भरी हुई है। उस श्रृंगार से हम 16 श्रृंगार संसार में होते हैं, तो यहां बाबा भी हमको श्रृंगार कराते हैं। कौन कौन से श्रृंगार, अपने आप एक 16 श्रृंगार तैयार करने हैं, ताकि हम उसकी सजी सजाई सजनिया जैसे वो चाहे वैसे उसके साथ जा सके। तैयार ही नहीं है सजनी तो जाएगी कैसे, फिर उससे दिल पर बैठेंगे कैसे, उसका दिल जीत सके। हमारी जन्म कुंडली जन्म पत्र उसके साथ पूरी मिलनी चाहिए, एक भी गुण काम नहीं होना चाहिए। अगर गुण काम में जन्मपत्री नहीं मिली तो क्या होगा, साथ में नहीं बराती बन के जाना पड़ेगा, साथी बनकर नहीं बराती जन के जाना पड़ेगा। तो उसके कौन कौन से गुण हैं वो पूरे याद करने हैं, उसके तो अथाह गुण है, वो गुणों का सागर है, लेकिन ये कहकर हमको रुक नहीं जाना है। लेकिन गुण कौन कौन से है उनका फिर चिंतन चाहिए। तो सभी को होमवर्क, जो बाबा के 32 गुण वाला कैलेंडर है ना, याद है किसी को 32 के 32 गुण, हाथ खड़ा करो। तो किसके लिए, दीवारों के लिए है वो कैलेंडर, रोज याद करने हैं और रोज उसको दोहराना है। अगर कोई सपने में पूछे तो भी हम बता सकते हैं कि हमारे साथी के ये गुण हैं, तभी तो वो देखेगा कि इसने मेरे संस्कारों को अपने संस्कारों में मिला लिया है। तो ये पूरा होमवर्क 32 के 32 गुण आज शाम तक याद हो जाने चाहिए, 32 मिनट में याद हो जाएंगे, बड़ी बात नहीं है वो। पहले से अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, 32 बातें याद नहीं होती, क्यों नहीं हो 32 बातें याद। अगर हमको कोई 32 गिफ्ट आइटम दे के जाए तो शाम तक याद होगी कि नहीं होगी, भूलेगी वो। तो भगवान हमको 32 गुण दे के जा रहा है, कम से कम उतना तो याद करें, हम उन पर चिंतन तो करें। तो कौन कौन से 32 गुण है, पीछे हाथ खड़ेगी ना, दो चार प्यार का सागर, शांति का सागर, गुणों का सागर, बस करो, बहुत हो गई, अवसान नहीं होता। तो वो डेली पहले लिखने हैं उसको, बड़े सजा के लिखने हैं, फिर सीने से लगाने हैं, वो सोचना है ये किसके गुण है, मेरे बाबा के गुण हैं, मेरे साथी के गुण हैं। वो बाबा कहते हैं सर्व संबंधों का सुख कैसे अनुभव होगा, वो जो हमारा परम संबंधी है, जो पूरे संसार जिसको ढूंढ रही है, उसने हमको आकर ढूंढा है, तो उसकी सिफतों को उसकी विशेषताओं को तो हमने जीवन में लाए कि नहीं लाए, तभी तो हमारे संस्कारों में समाएंगे। वो गुणों का सागर है, वो दिव्य दृष्टिदाता है, वो कर्मों की गुहगति को जानने वाला है, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करने वाला है, काल के पंजे से छुड़ाने वाला है, आनंद का सागर है, सत्चित आनंद स्वरूप है, शांति का दाता है, ज्ञान का दाता है, ऐसे अनेक गुण पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने वाला है, विष्णु द्वारा नई सृष्टि की पालना करने वाला है, ऐसे 32 के 32 याद आने चाहिए और सिक्वेंस वाइज याद करने हैं। पतित पावन है, दिव्य बुद्धि दाता है, नर से नारायण बनाने वाला है, पतित से पावन बनाने वाला है, तमो प्रदान से सतो प्रदान, पत्थर बुद्धि से लक्ष्मी से सब पास हो गए। लक्ष्मी से नारायण बनेंगे आप सब। तो आपने बोला क्यों फिर? तो एक ज्ञान के चुटकले है। तो बाबा के ज्ञान को पीना है धीरे धीरे सिप सिप करके, तो उसका दिल जीतना बहुत आसान है। तो एक है सच्चाई सफाई, दूसरा है प्योरिटी। हमारी दिन प्रतिदिन अर्थात प्योरिटी अर्थात क्या, एक है स्थूल सूक्ष्म दोनों ही, स्थूल रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण अर्थात हर एक की विशेषताओं को देखना भी पवित्रता है। अगर हम दूसरों के अवगुणों को देखते हैं, दिखाई तो देंगे लेकिन उनको चित्त में नहीं लाना है, उनका चिंतन नहीं करना है, प्रसार नहीं करना है, क्योंकि इस धरा पर कोई ऐसा नहीं जिसमें अवगुण ना कोई तो होता ही है। लेकिन बाबा ने आकर सबके क्या देखे हैं, गुण देखे हैं। तो अपने गुणों का चिंतन करना, अपने गुणों की भी लिस्ट बनानी है कि भगवान ने मुझे कौन कौन से गुण दिए हैं और उन गुणों को मैं कार्य में कितना लगा रहा हूं, सेवा में कितना लगा रहा हूं, जिनके हम साथ रहते हैं उनके गुणों को भी लिस्ट बनानी है, जो हमारे साथ लौकिक रिश्तेदार रहते हैं उनके भी गुणों की लिस्ट बनानी है, उनको भी गुणों के आधार पर अप्रिशिएट करना, प्रोत्साहित करना। नहीं तो अगर हमने किसी के अवगुण देख लिए और दो आदमी मिलकर उनका हम चिंतन करते हैं तो उन अवगुणों का प्रसार हमारे पुरुषार्थ में अवरोध बन जाएगा। वो पाप तो हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, हम उड़ान नहीं भर पाएंगे, वो सूक्ष्म बोझ हमको खींचता रहेगा। और जो हमने दो लोगों ने अगर बैठ के चिंतन किया किसी के अवगुणों का और फिर दो और दो से करते हैं, चार करते करते कहां तक पहुंच जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बोझ की टोकरी, बड़े सूक्ष्म रूप से भले हम पुरुषार्थ में आगे जाते जा रहे हैं, जागते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लीकेज भी होती है हमारी। तो सकारात्मक दृष्टिकोण, सबके हमें गुण देखने हैं, सबकी विशेषताएं देखने हैं, आपस में गुणों की लेन देन करनी है, गुणों की चर्चा करनी है। कई बार बाबा कहते हैं आपस में ग्रुप बैठो, चर्चा करो, लेकिन चर्चा करते करते कहीं और ही हम दिशा भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने साथ ही हम धोखा करते रहते हैं, इसलिए दुख होता है। सूक्ष्म रूप से जो गिल्ट कॉन्शियसनेस बनी रहती है, जो ब्राह्मण जीवन में निरंतर खुशी रहनी चाहिए वो क्यों नहीं रहती है, कहीं ना कहीं लीकेज है। और इस लीकेज के कारण सबके अलग अलग हो सकते हैं और उस लीकेज में हम से कैसे निकलना है वो भी हमको खुद ही पता है, दूसरा नहीं हमको कोई भी बताएगा, क्योंकि बाबा ने हम सबको सारे रास्ते बता दिए। भगवान के जो भगवान ने सब प्रश्नों का उत्तर दिया है, इंसान ने उन प्रश्नों का उत्तर देगा, सब प्रश्नों का उत्तर मुरली में समाया हुआ है, इसलिए किसी से पूछने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर उसके महावाक्यों को हम आत्मसात करें, अच्छी तरह उनको अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, थोड़ा धैर्यता पूर्वक, समझदारी से, गंभीरता पूर्वक, तो हर प्रश्न का उत्तर हमको मिल ही जाता है। सर्व समस्याओं का हल मुरली है, एक है केवल कहना, लेकिन उसमें फिर मुरली में डूब जाना ढूंढने के लिए, दूसरों से पूछने की आवश्यकता नहीं है जब तक मिले ना। हाँ, कुछ एक बातें होती है जिनका हमको बड़ों से उसका सहारा लेना पड़ता है, जैसे आज भी सहारा शब्द था मुरली में, कहां था आज की मुरली में सहारा शब्द था, क्या था स्लोगन, डैश बन रैम दिल बन आगे, रैम दिल बन आगे, रैम दिल बन कौन सी सेवा द्वारा, रैम दिल बन निराश और थकी आत्मा का सहारा बनो, लेकिन कौन सी सेवा द्वारा? मन की सेवा द्वारा। चलो ढूंढ लेना, अभी हमको भी याद नहीं आ रहा है। सो सहारा बनना है, ऐसा नहीं कि हम दूसरों की बैसाखियों का सहारा खुद ही ढूंढ दे रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम सारे संसार के सहारे दाता हो। कितना बड़ा टाइटल है, सारे संसार के सहारे दाता हो। तो अब देने के टाइम भी अगर हम लेने की अपेक्षा रखेंगे, वो देंगे कब? समय कौन सा चल रहा है? देने का चल रहा है। और हम ढूंढ रहे हैं सहारा, ढूंढ रहे हैं लेना, ढूंढ रहे हैं, तो फिर दूसरों को देंगे कब? फिर हमारी कमाई जमा कब होगी? तो अभी जैसे भगवान दाता है, हम भी दाता है। एक्सेप्ट करना है, जो उसमें सारी शक्तियां हैं वो सारी मेरे में भरी हुई है, लेने की आवश्यकता नहीं है। उसने जन्म से सारा अपना वरदानी हाथ मेरे ऊपर रखा है, सारी शक्तियां उसने मुझे सौंप दी है, लेकिन उनको फिर दोहराना है, उनको देखना है, उनसे प्यार करना, उनको स्पर्श करना है, उनको रोज कॉपी से बाहर निकालना है। डायरियों में सारी शक्तियां कहीं बंद तो नहीं हो गई है? रोज उनको सिमरन करना है, चिंतन करना है। योग में खाली बैठे बैठे बाबा को देखना नहीं है, बाबा की सिफतों को याद करना है, उसके गुणों को याद करना, शक्तियों को याद करना, उसके उपकारों को याद करना, उसकी प्राप्तियों को याद करना, रोज जो उसका ज्ञान बरसता उसको याद करना है, उसके वरदानों को याद करना है, उसकी सेवाओं को भी याद करना है। इसलिए बाबा कहते हैं सेवा स्थान पर जाने से पहले बांग क्या, उस धरनी को तैयार करो, है ना? धरनी का भी स्लोगन था परसों, कौन सा था? 20 तारीख को क्या स्लोगन था? जब भी कोई शब्द आए ना, उसको फिर छोड़ना नहीं है। तो देखो कौन सा स्लोगन था, उसको पक्का करना है, तभी तो हमारे संस्कार बनेंगे। कौन सा स्लोगन था? परसों सुनाया भी था इधर, धरनी में क्या डालो? परमात्म पहचान का बीज डालो तो परमात्म प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। तो वो देखना है अपने आप को भी। तो बाबा का दिल जीतने के लिए पहले है सच्चाई सफाई, दूसरा है स्वच्छता अर्थात पवित्रता कितनी है, तीसरा अर्थात हम समर्पित बुद्धि कितने हैं, चौथा है हम उसकी सेवाओं में कितनी तन्मयता से हम समय दे रहे हैं उसको, चाहे वो लौकिक सेवा है चाहे अलौकिक है। संबंधों को भी क्या समझना है, जो भी हमें बाहर संबंध निभाने के लिए मिले हैं, घर के संबंध क्या समझना है, किसके बच्चे हैं वो? बाबा के बच्चे हैं। बेटे को किसका बेटा समझना? बाबा का बेटा। बेटी पत्नी बाबा की पत्नी है, तो सब बाबा के अंदर ही अंदर बोलना, उनको नहीं बताना। ये बाबा का पति थोड़ा होगा भाई। तो वो तो हमको सेवा के लिए मिला हुआ है, तो उनकी हमको दिल से सेवा करनी है। तो सेवा का हमको ये कर्म क्षेत्र इतनी बड़ी स्टेज मिली है, दुआएं अर्जित करनी है, जितना उसके हमको स्थूल सूक्ष्म दुआएं अर्जित करनी है, क्योंकि संगम युग पर हम दुआओं का इतना स्टॉक जमा करेंगे जो सारे कल्प पर खाएंगे उनको बैठ के। और दुआएं अर्जित करने के हमको बहुत सारे स्रोत मिलते हैं, लेकिन हम कई बार उनको छोड़ देते हैं। किसी को मीठे बोल ही बोल देना, किसी को रास्ता बता देना, थोड़ा सहयोग कर देना, किसी का दुख थोड़ा सुन लेना, उसका भी मन हल्का हो जाए। तो दुआएं अर्जित करनी है। अगली बात है, अगर भगवान का दिल जीतना है तो, हाँ जी चलो 5 बातें कौन कौन सी बताई, पहले उनको पक्का कर लेते हैं। एक तो सच्चाई सफाई, दूसरा स्वच्छता अर्थात पवित्रता, तीसरा समर्पणता, चौथा हाँ जी सेवा, तन मन धन से पूरी सेवा, और पांचवा दुआएं अर्जित करनी है, सेवाओं से हो जाएंगी। नेक्स्ट पिछले क्लास में सूर्य भाई बता के गए साक्षी भाव, क्या बोला था उन्होंने साक्षी भाव के बारे में? अभी ताजा सुना ना, भगवान साथी बनेगा, क्योंकि कई बार हमको साक्षी बनना पड़ता है दूसरे। हाँ जी आगे दीदी जी का मोस्ट वेलकम। हाँ हमारे दीदी जी अवतरित हो रहे हैं, आ रहे हैं इधर ही, हमारे शशि दीदी जी आ रहे हैं, आइए बहन जी, आ जाओ। चलो शशि बहन जी का करतल धनुष से हम स्वागत करते हैं।